समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें आपके लिए लेकर आए हैं हम तमाम खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे और हम चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है आज उनके पास। इन सब के अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर होगी और कार्यक्रम के लगभग अंत में हम उन विशिष्ट लोगों को भी याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है, जन्मदिवस है या फिर जयंती है। श्रोताओं, परिक्रमा के संक के साथ मैं हूं आज निखिल कुमार और मेरे साथ में है अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, स्वागत है आपका भी।
Hello Nikhil, hello and a very good afternoon. You're tuned to Parikrama on 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Nikhil. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
Jee haan. भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर लोकसभा में विशेष चर्चा आज दूसरे दिन भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चर्चा का जवाब देंगे।
Prime Minister chairs 4th National Conference of Chief Secretaries in New Delhi to further strengthen center-state partnership for faster growth.
एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित दो विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाएंगे।
In South Korea, proceedings of parliament begin for the second impeachment motion against President Yoon Suk-yeol for his attempt to impose martial law.
इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल आज बारिश के कारण समय से पहले समाप्त करना पड़ा।
एंड इंडिया टू टेक ऑन जापान इन द सेमीफाइनल ऑफ द वुमेन्स जूनियर एशिया कप हॉकी एट मस्कट ओमान टुडे। And now, Nikhil, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about two topics, National Energy Conservation Day and the birth centenary of Raj Kapoor. Well, Nikhil, today is the National Energy Conservation Day. It is a day to raise awareness about why saving energy is important and to appreciate a country's success in energy conservation. Well, energy conservation is important, especially in a nation such as India, where urbanization and industrialization have skyrocketed energy demands. Energy efficiency stands as a cornerstone of sustainable development, weaving together the threads of progress and environmental stewardship. In India, this deep dedication to sustainability is passionately commemorated on December 14th, that is today, as National Energy Conservation Day. Energy conservation means using less energy by adopting better practices and technologies. And Nikhil, it's something we all need to take part in by being mindful of how we use energy every day. And by doing this, we save resources for the future and help protect the environment.
बिल्कुल श्रोताओं, और वर्ष 1991 में शुरू किया गया ये दिन ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE के द्वारा मनाया जाता है, जो ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसके लिए ऊर्जा सचेत व्यवहार को हमारी दैनिक दिनचर्या में एकीकृत करने की हम सभी के लिए आवश्यकता है। अब चूंकि जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है तो ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में ऊर्जा की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है और चिंताएं भी है कि हमारे पास कहीं ऊर्जा के संसाधन खत्म ना हो जाएं। तो ऊर्जा बचाने का काम करना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, अन्यथा मानव समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ऊर्जा स्थिरता के प्रति भारत का समर्पण, बिजली के उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के उन्नयन में इसकी प्रगति से स्पष्ट है, जो एक हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
Yes, absolutely. And the government of India has undertaken a two-pronged approach to cater to the energy demand of its citizens while ensuring minimum growth in carbon dioxide emissions so that the global emissions do not lead to an irreversible damage to the earth system. On one hand, in the generation side, the government is promoting greater use of renewable in the energy mix, mainly through solar and wind, and at the same time, shifting towards supercritical technologies for coal-based power plants. On the other hand, efforts have been made to efficiently use the energy in the demand side through various innovative policy measures under the overall ambit of Energy Conservation Act 2001.
भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के लक्ष्य के साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय स्तर पर 1 मार्च 2002 को वैधानिक निकाय के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई थी। ये ब्यूरो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए कदम उठाता है। अधिनियम राज्यों को कार्यान्वयन और राज्य में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई एजेंसियों को नामित करने का भी निर्देश देता है।
Yes, and India's commitment to energy sustainability is shown in its progress in electricity generation, renewable energy and infrastructural renovations, paving the path for a greener future. And the country's journey towards energy sustainability is underpinned by transformative policies and initiatives. Notable among these are Perform, Achieve and Trade PAT scheme, which is designed to reduce energy consumption in energy-intensive industries. This scheme has saved 55,000 crore rupees annually and avoided 110 million tons of carbon dioxide emissions, showcasing its impact on industrial sustainability. Another step is Standards and Labeling SNL program. This program empowers consumers to make informed choices by rating appliances for energy efficiency, and covering 38 appliances has been instrumental in promoting energy efficient products across the nation.
Iske baad agli pehel Go Electric abhiyan hai. 2021 mein shuru kiya gaya ye abhiyan electric vahano yani jise hum short form mein EV bhi kehte hain aur इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा देता है। इनके लाभों और ई मोबिलिटी को सहयोग करने वाली सरकारी गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है, और इसके बाद हम इलेक्ट्रिक वाहन यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी बात करते हैं। 2022 में शुरू किया गया ये प्लेटफॉर्म ई मोबिलिटी को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ईवी उपयोगकर्ताओं को सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का पता लगाने के लिए उनका मार्गदर्शन भी करता है। इसके अलावा उजाला कार्यक्रम के जरिए वर्ष 2015 से लेकर अब तक उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल प्रोग्राम ने लाखों एलईडी बल्ब और ट्यूब वितरित किए हैं, जिससे सालाना तौर पर 176.2 अरब किलोवाट की बचत हुई है और 125 मिलियन टन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई है। और अंत में श्रोताओं आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के तहत 1.3 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे सालाना 8.76 बिलियन किलोवाट की बचत हुई है और नगर पालिका बिजली की लागत में भी काफी कमी आ चुकी है।
Yes, so Nikhil, to round up our discussion, National Energy Conservation Day is way more than a mere event. It is a movement that seeks to embed energy consciousness into India's ethos. And as the country marches towards sustainable development, energy efficiency becomes a cornerstone of this transformation. And by aligning individual efforts with national objectives, India can illuminate the path to a future that balances progress with environmental care. Together we can shape a sustainable tomorrow. And now, Nikhil, moving on to a very interesting topic, that is the birth centenary of Raj Kapoor. I hope you are a great fan of Raj Kapoor. And today is the 100th birth anniversary of Raj Kapoor, the man who launched 1,000 films as the actor, director and producer. Raj Kapoor is one of the most influential figures in the history of Indian cinema. Responsible for a series of box office hits in the late 40s and early 50s that helped define the appeal and charted the future of commercial filmmaking in the country.
मुड़मुड़के न देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के न देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के न देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के न देख मुड़मुड़के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान अभिनेता राज कपूर को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज कपूर सिर्फ एक फिल्म निर्माता नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक राजदूत भी थे, जो भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर लेकर के गए थे। श्री मोदी ने सिनेमा के प्रति उनके जुनून की भी सराहना की और कहा कि उनकी फिल्में कलात्मकता, भावनाओं और सामाजिक टिप्पणियों का मिश्रण रही, जो आम नागरिकों की आकांक्षाओं तथा संघर्षों को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री ने राज कपूर के प्रतिष्ठित चरित्रों और अविस्मरणीय धुनों का भी उल्लेख किया, जो दुनिया भर के दर्शकों के साथ आज भी गूंजती रहती हैं।
Yes, Nikhil, and specifically Indian yet universal in theme, Raj Kapoor's slickly polished films offered enough people power, populism and old-fashioned glamour to become successes across the Soviet Union and the Eastern Bloc, the Middle East and China.
ओ महबूबा ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, नाराज हो किस बात का है गम, इस सोच में डूबी हो तुम हो जाएगा संगम। तुम महबूबा
Yes, and born into a family of stage and screen artists, his father Prithviraj was a famed theatre star who later turned to film. Kapoor channeled the sturdy charm of Clark Gable, the underdog appeal of Charlie Chaplin, and the burning intensity of a young Orson Welles. Though no Western stars could match the mournful passion he brought to his best roles. You talk like an ancient poet, one character says to another in Barsaat, the movie in 1949, Nikhil. Idiosyncratic out of step with the times, many of Kapoor's performances seem drawn more from the doomed romanticism of a Byron or a Baudelaire than cinema.
एक ही समय में चमकदार और यथार्थवादी या फिर कहें कि दुखद राज कपूर की भ्रमित करने वाली फिल्मों की तुलना कुछ ऐसी है जिसे पश्चिमी दर्शकों ने अनुभव किया। महाकाव्य संगीत संख्याएं नायरिश डी फोकस सिनेमेटोग्राफी और बेहद विस्तृत सेट बेघरों के लिए जय जयकार वर्ग व्यवस्था के खिलाफ रोना और सामाजिक गतिशीलता के लिए दलीलों के साथ केंद्रीय मंच साझा करती हैं उनकी कहानियां। स्क्रिप्ट के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि विक्टर ह्यूगो या फिर चार्ल्स डिकेंस से ली गई है और फ्रैंक के माध्यम से फिल्टर की गई कैप्रा और बुस्पी बर्कले से। समय के साथ फिल्मों का सौंदर्य शास्त्र भी बदल गया और उनकी राज कपूर की जो बात करें फिल्मों की तो आग 1948 में भव्य जर्मन अभिव्यक्ति से लेकर बरसात 1949 में स्पष्ट चित्रण तक या फिर बॉबी 1973 के उज्जवल टेक्निकलर पागलपन तक, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिन्होंने राज कपूर की फिल्मों को एक नए आयाम को सामने ला करके रखा भारतीय दर्शकों के सामने।
दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा ऐतबार ना रहा, ऐतबार ना रहा। अमानतें में प्यार की गया
Yes, and as a director and producer, Kapoor helped popularize many of the tropes that make up commercial Indian cinema or Bollywood today. This series offers a chance to see not only the power of the great showman, but also the roots and arguably the height of popular Indian cinema.
Avara hum,
या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ घर बार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ
वाकई ये गीत ऐसे हैं जो राज कपूर के पूरे व्यक्तित्व को हमारे सामने ला करके रख देते हैं और जब ये गीत हमारी सामने बज रहे होते हैं हमारे कानों में पड़ते तो ऐसा लगता है कि राज कपूर स्वयं हमारे सामने खड़े होकर इन गीतों को गा रहे हैं और श्रोताओं अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और ये देखने का कि वो क्या लेकर के आए हैं आप सभी के लिए विशेष तो सबसे पहले हम बिहार की बात करते हैं बिहार में लोगों की आंखों से संबंधित गंभीर बीमारियों के लिए इलाज करने के उद्देश्य से एक अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा इस अस्पताल में 75% मरीजों का इलाज निःशुल्क होगा और हाल ही में इस संबंध में राज्य सरकार ने कोयम्बटूर के एक फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास
नेत्र रोगों की अति विशिष्ट चिकित्सा के लिए पटना में जल्द ही एक अस्पताल खोला जाएगा इसके लिए हाल ही में राज्य सरकार और कोयम्बटूर स्थित शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार ने फाउंडेशन को पटना में 1.6 एकड़ जमीन ₹1 की टोकन राशि पर मुहैया कराई है समझौते के तहत अस्पताल के भवन का निर्माण फाउंडेशन को करवाना होगा
आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में जो संकरा नेत्रालय के साथ MOU साइन हुआ है उसके बाद अब बिहार के लोगों को आंख की कितनी भी गंभीर बीमारी हो उसके लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल किया उन्होंने जो आग्रह किया संकरा नेत्रालय के लोगों से उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए संकरा नेत्रालय ने बिहार में अपने अस्पताल को खोलने का निर्णय किया और मुख्यमंत्री जी ने जिस तेजी के साथ जमीन उपलब्ध करवाई उनके निर्देश पे हम सब लोगों ने सारी व्यवस्था बनाई और संकरा नेत्रालय को कंकड़बाग में भूमि उपलब्ध कराया कि वो उस पे अपने अस्पताल का निर्माण कर सके
समझौते के अनुसार अस्पताल में 75% मरीजों का इलाज निःशुल्क होगा साथ ही ₹2.5 लाख से कम आय वाले परिवारों को भी इलाज के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा अन्य मरीजों का इलाज भी रियायती दर पर किया जाएगा परिक्रमा के लिए पटना से डॉक्टर सविता पारी
Yes, Nikhil, now we move over to Chennai and for disseminating cultural awareness of the South Zone Cultural Center is playing a vital role. In an exclusive interview with Akashvani, the director of the South Zone Cultural Center, K.K. Gopalakrishnan, has discussed in detail about the role of the center. We have more from a correspondent, Joy.
The South Zone Cultural Center promotes the indigenous cultures of the zone closer to the masses, especially for the rural and the underprivileged artist. Various art forms in the southern states are being promoted through the center. Through dance, drama, music and art, culture of various states are disseminated through the Ministry of Culture. The programs are organized with the intention to perform a centrifugal role of disseminating cultural awareness. In conversation, Dr. Gopalakrishnan, the director of South Zone Cultural Center, explained the role on promoting Indian culture and art forms to the world.
The message of the cultural vibrance of India has gone through G20 to many countries of the world because we are culturally a superpower and our culture or performing arts have a healing power also. That we proved. Because what happened in folk and tribal, this kind of art form, basically it's a group family coming. Though a father may not pay, but to ensure them that to build a confidence in them that they are able to earn, we increased. Now we pay 6,000.
The uniqueness of Indian art goes beyond elements of entertainment and is spiritual.
Compared to many Western art traditions, a high quality of Indian art form is, whether the folk or a mainstream, whatever it is, our mind is tuned in such a way that the spiritual element, which is not, is well evident in almost all the Indian traditional arts.
The South Zone Cultural Center functions from Tanjavur, a heritage center for the state.
In Tamil Nadu, 25 acres of land was given by the Tamil Nadu government. And zonal centers are basically not in the heart of the city or metro capital. It should be in the area where the folk and tribal arts are more. Our main aim is support to folk, tribal and vanishing art forms.
In the modern age of artificial intelligence and rapid digitalization, encouraging art forms needs to be a part of life. This is Blessy from Akashvani, Chennai.
और श्रोताओं, आप चलते हैं हमारे अगले संवाददाता साक्षी सिंह के पास. और आपको ये बता दें कि भारतीय सेना को आज 456 नए सैन्य अधिकारी मिले हैं. हमारे संवाददाता ने यह बताया है कि देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA में आयोजित पासिंग आउट परेड में इन अधिकारियों ने भारतीय सेना का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त किया है.
ऐतिहासिक चेटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वायर पर आयोजित इस परेड की सलामी नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल ने ली. अनुशासन, समर्पण और गर्व का प्रतीक ये परेड दर्शकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा. इस अवसर पर जेंटलमैन कैडेट जतिन कुमार को प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया. इस परेड में कुल 491 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए, जिसमें 35 कैडेट्स मित्र राष्ट्रों से थे. ऑर्डर ऑफ मेरिट में पहला स्थान पर रहे जेंटलमैन कैडेट पतम सिंह को स्वर्ण पदक, दूसरे स्थान पर रहे जतिन कुमार को रजत पदक और तीसरे स्थान पर रहे मयंक ध्यानी को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया. साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून.
और अब खेल जगत की हलचलों पर नजर डालें तो ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल वर्षा के कारण समय से पहले समाप्त घोषित करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने उस समय अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 28 रन बनाए थे और इससे पहले सुबह टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन खेल वर्षा के कारण कई बार बाधित हुआ जिसके कारण खेल को रोका गया. कल दूसरे दिन का खेल आधे घंटे पहले शुरू होगा ताकि कुछ चीजों को कवर किया जा सके.
यस सर, इन हॉकी इंडिया विल टेक ऑन जापान इन द सेमीफाइनल ऑफ द वुमेन्स Junior Asia Cup at Muscat in Oman today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. In the other semi-final, China will take on South Korea at the same venue at 8:30 p.m. IST. And now, Nikhil, we will take you, we'll take our listeners on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Today we remember the prominent Hindi novelist Upendranath Ashk, who was born on the 14th of December 1910. Upendranath was one of Hindi literature's best known authors. During the 1930s, he used to work for Lala Lajpat Rai's newspaper Bande Mataram as a reporter and later as editor for the daily Veer Bharat and the weekly Bhuchal.
Ashk was born in Jalandhar, Punjab. He spent the early part of his writing career as an Urdu author in Lahore, but later, encouraged by Premchand, he switched to Hindi. Ashk is perhaps best known for his six-volume novel series, Girti Diware, an intensely detailed chronicle of the travails of a young Punjabi man in 1930s of the British India. The protagonist in the series is a witness as well as a participant in the social change during the time and appreciates the reduction of the burden of tradition.
Ashk also worked for All India Radio from 1941 to 1945 as a playwright and Hindi advisor, where his colleagues included Krishan Chandar and Sadat Hasan Manto.
Aaj prastut hai Shri Upendranath Ashk ka likha ye natak.
In 1944, he moved to Bombay to write dialogues and screenplays for the production company Filmistan. He also became involved with Indian People's Theatre Association and wrote one of his most noted plays, Tufan Se Pehle, which was produced for the stage by Balraj Sahni. The play was later banned by the British government.
After independence, Upendranath Ashk moved to Allahabad and founded a publication house. In 1965, he was awarded the Sangeet Natak Academy Award as the leading playwright of Hindi. He died in 1996. We salute this great Indian.
On the 14th of December 1921, Banaras Hindu University conferred the degree of Doctor of Letters upon Annie Besant in recognition of her services to Indian education. A co-founder of BHU, Annie Besant was involved with improving the Indian education system from her initial days in India. In 1898, she founded the Central Hindu School and College in Varanasi, and a few years later, in 1904, she started the Central Hindu School for Girls. Theosophists from overseas came to help her in the work of the colleges, which were established with the object of impressing India's past glory on the minds and hearts of the students. Later, the institution became the nucleus of Banaras Hindu University.
We also remember martyr Devi Singh Guntia of Jabalpur district of Madhya Pradesh, who took active part in the First War of India's Independence in 1857. He participated in the attack on the Shahpur police station on November 30, 1857 and attacked British positions in Jabalpur, Sioni and Narsingpur districts. He also led a force of 1,500 people in a battle against the British force on December 7, 1857. He escaped after the defeat of his force, but was captured by the British soon after and executed by hanging on December 14, 1857. We pay our respect to the great martyr.
Yes, and now Nikhil, we have reached that section of a program wherein we remember all those greats who are associated with today's date. And we start off with Walter Lippmann, who passed away on this day in 1974. He was an American writer, reporter and political commentator. With a career spanning 60 years, he is famous for being among the first to introduce the concept of the Cold War, coining the term stereotype in the modern psychological meaning, as well as critiquing media and democracy in his newspaper column and several books, most notably his 1922 Public Opinion.
आज ही पुण्यतिथि है जाने माने गीतकार शंकर दास की श्रीलाल यानी शैलेंद्र की. सरल और सटीक शब्दों में भावनाओं और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करना शैलेंद्र जी की महान विशेषता थी और उनके गीत ऐसे रहे जो किसी भी संवेदनशील हृदय में समा सकते थे और आंखों में आंसू ला सकते थे. फिल्मों में गीत लिखने से पहले देश की आजादी की लड़ाई में योगदान देने का भी उनका एक अलग तरीका रहा. उन्होंने हमेशा देशभक्ति से सराबोर वीर रस की कविताएं लिखी और उसके बाद फिल्मों में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो तमाम ऐसे गीत लिखे जो आज भी बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं. तो आइए सुनते हैं आपके लिए चलते चलते का ये गीत.
प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है. प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है.
And Biswajit Chatterjee was born on this day in 1936, known mononymously as Biswajit. He's a veteran Indian actor, producer, director, singer and politician, known for his work in Bengali cinema and Hindi cinema.
जी हां, अपने स्वाभाविक अभिनय और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध विश्वजीत ने बंगाली और हिंदी फिल्मों के दर्शकों के दिलों में वर्षों तक राज किया. आइए सुनते हैं उनकी एक फिल्म 20 साल बाद का ये गीत.
बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई. देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं. चोरी चोरी आके शोक बिजलियां,
Yes, in the 1970s, Nikhil, Biswajit cut a disc of two Bengali modern numbers, Tomar Chokher Kajole and Joy Joy Din, both composed by Salil Chaudhary. In 1975, Biswajit produced and directed his own film, Kehte Hai Mujhko Raja.
और श्रोताओं, बता रहे हैं आज आपको जन्मदिन है श्याम बेनेगल का. वे मुख्य धारा से अलग फिल्में बनाने के लिए भारत में हिंदी सिनेमा के एक अग्रणी फिल्म निर्देशक माने जाते हैं. सार्थक सिनेमा के प्रति वचनबद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल अपनी श्रेणी के किसी भी फिल्मकार की तुलना में अधिक सक्रिय रहे. हिंदी फिल्मों में तमाम ऐसी फिल्में बनाई जो आज भी बहुत पसंद की जाती है. उनमें अंकुर, मंथन, कलयुग, जुनून, त्रिकाल, मंडी, सूरज का सातवां घोड़ा, सरदारी बेगम, समर, हरी भरी और जुबैदा. और इसी के साथ मैं श्रोताओं अनुमति दीजिए निखिल और अभिषेक को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर संपन्न करने की।
नमस्कार।